धी धृति रसला उमा नियुत सर्पिही इला अंबिका इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राण्य है। आपको दोहराना है, ये 11 रुद्राणियां हैं। रुद्र, हे रुद्र, ते तुम्हारी स्त्रियः पत्नियां। अनुवाद, हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार हैं: धी धृति रसला उमा नियुत सर्पी इला अंबिका इरावती स्वधा तथा दीक्षा। कोई तात्पर्य नहीं इसका, आगे बढ़ेंगे। गृहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभिः सृज प्रजा वन्हि प्रजानामसि यत्पतिः। अनुवाद, हे बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पत्नियों के लिए मनोतीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। तात्पर्य, चले इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा, रुद्र के पिता ने रूप में ब्रह्म, रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए वासस्थान तथा उसके नामों का भी चुनाव किया। यह स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे, जिस तरह वे अपने पिता द्वारा रखे नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है। संसार की जनसंख्या बढ़ाने का यह सामान्य तरीका है। दूसरी ओर चारों कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत क्योंकि वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे। जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तदाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णजयतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
इस अध्याय में किस तरह से ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा को जानकर भगवान की इच्छा पूर्ण करने हेतु सृष्टि का निर्माण करना शुरू किए। सबसे पहले उनके चार मानस पुत्र हुए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, और उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि ये ब्रह्मा जी जो बद्ध जीव सोए हुए हैं महाविष्णु के उदर में लेटे हुए अनादि काल से, बहुत समय से, फिर से उनको जागृत करके एक मौका दिया जाता है भगवत धाम वापस जाने के लिए, एक मौका देना। तो ये कर्तव्य है, गुरु न सस्यात् पितरो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् नमो चये तत् समुपेत मृत्युम्। सबका कर्तव्य यही है, कोई भी एक नेतृत्व करने की पदवी, माता पिता गुरु देवता बंधु जो भी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, पूरी सृष्टि का उद्देश्य एक ही है, हर एक व्यक्ति को वापस भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करना। तो इसीलिए बोले कि आप जनसंख्या सृष्टि करो, पर कुमारों ने नकार दिया। पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और ब्रह्मा जैसे पिता हो तो, हमारे संस्थापक आचार्य हो, और वो भी भगवान की सेवा में ही कर रहे हो, और फिर भी हम देखते हैं चतुष्कुमार ने नकार दिया। रूपा जी लिखते हैं, जब तक हम चतुष्कुमार के स्तर पर नहीं है तब तक नकारना नहीं चाहिए अपने माता पिता की आज्ञा को। पिता नाम देते हैं, काम पे लगाते हैं, घर बना के देते हैं, शादी करा के देते हैं, वो सब स्वीकार करते, पर जब सेवा देते तो वो सेवा में वो नहीं। तो करना चाहिए, कर्तव्य है, पर केवल एक आज्ञा है जो नकारा जा सकता है। रूपा जी लिखते हैं गुरु की भी, और वो है विवाह करके बच्चे पैदा करना, वंश विस्तार करना। तो भी कर्तव्य है, पर दूसरे तरह से वंश का विस्तार करना चाहते तो ठीक है, जैसे नारद मुनि, नारद मुनि ने विवाह नहीं किया, वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, पर वो किस तरह का वंश विस्तार कर रहे हैं, वो अलग प्रकार का वंश का विस्तार कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये वैष्णव वंश का विस्तार कर रहे हैं, परंपरा में हमारे गुरु हैं, पिता जैसे हैं, और उनका आदेश लेकर भक्ति लता बीज को आरोपण करके लोगों के हृदय में भक्ति का जो फल है उसको उत्पन्न करना, और इस तरह से वैष्णव का वंश बढ़ाना। दो प्रकार से वंश बढ़ाया जा सकता है, विवाह करके बच्चे पैदा करेंगे तो बच्चा पैदा होते तो वैष्णव परिवार में जब बच्चे पैदा होते तो अच्छा लगता है ना, चलो वंश विस्तार हो गया, वैष्णव परिवार बढ़ा। अगर गृहस्थ आश्रम भगवान की सेवा में करे तो वो बच्चे पैदा होते हैं, उनको अगर अच्छी तरह से देखभाल करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत ही श्रेष्ठ कर भगवान को प्रिय कर सेवा है, पर गारंटी नहीं है बच्चा भक्त बनेगा कि नहीं ये थोड़ा समस्या है, पर हमारी ओर से पूरा प्रयास जो दूसरे पुत्रों ने किया, दक्ष प्रजापति ने किया, दूसरे पुत्रों ने अच्छे तरह से स्वीकार किया, उस सेवा को अच्छे तरह से किया, स्वयंभू मनु ने किया, वही महाजन है, और नारद भी महाजन है, चतुष्कुमार भी महाजन है, दो प्रकार के महाजन पुत्र, जिन लोगों ने पिता की आज्ञा का पालन करके वंश विस्तार किया, स्वयंभू मनु, ध्रुव महाराज, कैसे कैसे पुत्र हुए उत्तानपाद। तो एक तरह से पूरी जिम्मेदारी ली, और दूसरी तरह से नारद मुनि और चतुष्कुमार, उन्होंने अपने पिता के आज्ञा को नकारा, पर नकारा एक ऊंचे उद्देश्य से कि ये बहुत बड़ा झमेला हो जाता है, ये सब इसका ऐसा देखभाल करना, मुझे ये सब, ये मेरा प्रवृत्ति नहीं है, पर मैं आपकी आज्ञा के अंदरूनी मतलब को समझ रहा हूं, आप चाहते हो कि सबको तैयार करके शुद्ध भक्त बना के भगवत धाम, इसीलिए तो आप सृष्टि कर रहे हो, सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य है जो सुप्त अवस्था में है, जीव जागो जीव जागो, जागते हुए भी सोए हुए हम लोग इस संसार में है, हर एक व्यक्ति जागते हुए सोया हुआ है, तो उस सोए हुए व्यक्ति को जगाना यानी उसकी भक्ति को जगाना, सुप्त अवस्था में जो भक्ति है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, सुप्त अवस्था में श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, जैसा सूर्य उदित होता है, प्रकाशित होता है, ऐसे हमारे हृदय में जब शुद्ध भक्ति का सूर्य उदित होगा, सारे अंधकार के, अज्ञान के अंधकार नष्ट हो जाएंगे, हम तैयार हो जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे। एक ही उद्देश्य है इस सृष्टि का, आज्ञा का पालन कर रहे हैं इस उद्देश्य से, और आज्ञा को नकार रहे हैं इस उद्देश्य से, तब हम नकार सकते हैं, तब हम नकार सकते हैं आज्ञा को। हम क्या कर रहे हैं यह महत्व नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में हम क्या कार्य करते हैं यह महत्व नहीं है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रगति मतलब क्या, प्रगति मतलब अपनी चेतना को विकसित करना। अभी आच्छादित चेतना है, आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंतेय दुष्पुरेणा अनलेन च। अभी ये चेतना ढकी हुई है एकदम, धूमेन आवृते वन्हिर यथा आदर्शो मलेन च यथुल्बेन आवृतो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। कृष्ण प्रेम का जो ज्ञान है, राज्य विद्या, ये भी ढका हुआ है, यथा उल्बेन जैसा एक गर्भ में बच्चा जैसे ढका हुआ है, बच्चा गर्भ से ढका हुआ है, तीन उदाहरण देते हैं। यथा धामसी समिद्ध अग्निर, धूमेन आवृते वन्ही, धूमेन आवृते, आवृते मतलब आवरण। तो पहला वन्ही, वन्ही मतलब आग, आग धुआं से ढका हुआ है, पहला आवरण धूमेन आवृते वन्ही। ये थोड़ा सूक्ष्म आवरण है, उससे भी ज्यादा थोड़ा स्थूल आवरण। यथा दर्शो मलेन च, आईना धूल से ढका हुआ है, ये दूसरा उदाहरण। और भी स्थूल आवरण, यथुल्बेन आवृतो गर्भ, गर्भ में जो बच्चा है उल्बेन गर्भ से ढक जाता है, तथा तेन इदम आवृतम, इस तरह से इस संसार में हर एक जीव का जो चेतना है अभी ढका हुआ है। और आत्म साक्षात्कार का मतलब है इस आवरण को हटाकर कृष्ण प्रेम को जागृत करना। तो ये तीन अवस्था है। जैसे एक फूल है, फूल पहले एक क्या बोलते हैं, बड, कली, कली आने से पहले भी गुलाब का आप देखो लाल गुलाब होता है, पर पहले एक हरा रंग का एक ऐसा मोटा सा एक जैसा गोली जैसा आता है, हरा रंग का होता है, उसके अंदर गुलाब है पर आच्छादित अवस्था में है, पूर्ण रूप से ढका हुआ है, पता भी नहीं चलता है क्या है अंदर। उसके बाद और थोड़ा पहले हाँ, फिर संकुचित, संकुचित मतलब थोड़ा ऐसा लाल फूटता है, उसमें से हरा जगह फूटता है, उसमें से थोड़ा लाल दिखता है, वो संकुचित चेतना। उदाहरण फूल का उदाहरण चेतना से लीजिए, और ये हरा जो कली है उसका उदाहरण शरीर से लीजिए। तो अभी ढका हुआ है, वो पेड़ योनि है, पेड़ योनि में भी जीव है पर दिखता ही नहीं है जीव। फिर उसके बाद पशु योनि, पशु योनि में चेतना दिखता है, चलता फिरता खाता पीता भोगता है, तो थोड़ा आच्छादित से थोड़ा संकुचित, पर फिर भी संकुचित है, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है, कुत्ते बिल्ली नहीं कर सकते। उसके बाद थोड़ा उदित, उदित मतलब अभी फूल की रेशियो ज्यादा है, और जो नीचे जो हरा वाला जो क्या है सेपल, वो थोड़ा कम है, अभी फूल ज्यादा नजर आता है, वो मनुष्य योनि है, वो मनुष्य योनि, उसको उदित चेतना कहते हैं। इसीलिए मनुष्य योनि सबसे अनुकूल है आत्म साक्षात्कार के लिए, नहीं तो फिर 84 लाख में भ्रमण करते रहेंगे। तो उदित चेतना, और फिर जब हम साधना भक्ति में लगते हैं तो वो थोड़ा विकसित चेतना, उसको हम भक्ति को विकास करते हैं, तो विकसित चेतना मतलब फूल और ज्यादा खुल गया, पंखुड़ी खुल गई। और बाद में जब रागानुग भक्ति, प्रेम भक्ति, साधना भक्ति मतलब विकसित, विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, इच्छा नहीं है पर फिर भी आके बैठते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है, मन को अच्छा लगे या ना लगे पर करेंगे हम, ये विकसित चेतना। उसके बाद जब स्वाभाविक प्रेम से कार्य करते हैं, जैसे कुंती महारानी कहती है त्वयि मे अनन्य विषया मतिर मधुपते, मतलब हम रह नहीं सकते। अभी हमको मंगल आरती में क्यों आना पड़ता है? बोला है गुरुजी ने ब्रह्मचारी आश्रम में, क्या करेंगे, अटेंडेंस लेते नहीं तो 108 महामंत्र लिखना पड़ता है। तो डांट खाना पड़ता है, घूर घूर के देखते हैं जो इंचार्ज है, या लोग क्या कहेंगे, मंगलन में आता नहीं है तू, लोग कहेंगे तू ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है, लोगों के डर से। पर बाद में जैसे एक नवयुवक एक नवयुवती से जब प्रेम करता है और वो अपॉइंटमेंट देती है 7 बजे हैं रंकाड़ा के गार्डन में, वाह, आप सोचते हैं 7 बज गया अभी जाना पड़ेगा, कौन से पेड़ में ढूंढना पड़ेगा, नहीं 5 बजे ही तैयार, अरे हो नहीं रहा है, घड़ी हिल नहीं रहा है, कांटा हिल नहीं रहा है, थोड़ा हिलाने का दिल करता है उसको, क्यों, क्योंकि प्रेम है, मतलब उसको लगता है प्रेम है, वो काम है, विकृत प्रतिबिंब है, वही प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। रूप गोस्वामी यही उदाहरण देते हैं, युवती नाम यथा यूनो यूनाम च युवती यथा मनोभी रमते तद्यत मनोभी रमताम थोई, हे प्रभु जिस प्रकार एक नवयुवक नवयुवती के प्रति आकर्षित होता है, भूल जाता है, निर्लज्ज होकर भागता है, दुनिया कुछ भी कहे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, तो ये प्रेम जो है निर्लज्ज हो जाना, डर नहीं, अरे उल्लू क्या कहे, कुछ भी लोग कहने दो, हम प्रेम करते हैं। इसी तरह से महाप्रभु को जब पूछा गया तो बोले यही है, जब से मेरे गुरु ने नाम दिया मैं नाम लेने लगा, मैं पागल हो गया, तो मेरे को लगा कुछ गड़बड़ी है, मैं गुरु के पास गया, तो गुरु ने यही कहा, बोले तेरे को वेदांत वेदांत का तो नहीं है, तू हरिनाम ले बस। बोले मैं पागल हो गया, किबो मंत्र दिला गोसाई किबा तारा बल जपी दे मंत्र हो लो पागल, प्रेम में पागल हो जाता है ना आदमी। मैं भी पागल हो गया, तो मैं गया गुरु के पास, पूछा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, तो उन्होंने कहा अरे यही तो भागवत का निष्कर्ष है, सारे भागवत का सार यही है, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसति अथो रोदिति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्यः। बोले एवं व्रतः दृढ़ता पूर्वक दृढ़ व्रता एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, हमारे इष्ट देव स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अगर व्रत दृढ़ व्रत मतलब साधना भक्ति अच्छा करे, तो साधना भक्ति क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो स्वाभाविक प्रेम है वो उत्पन्न होना चाहिए, वो खिलना चाहिए, एक्चुअली इस प्रेम है भगवान के प्रति, पर अभी सुप्त अवस्था में है, क्योंकि भगवान का ज्ञान नहीं है, हमारे प्रेमी ने हमको अपॉइंटमेंट दिया है पर हम सोए हुए हैं, इसलिए बोलते अरे जागो टाइम हो गया, राह देख रहे। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जात अनुराग, तो धीरे 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 प्रेम उत्पन्न होगा, जात अनुराग, और जब हो गया प्रेम हो गया तो क्या, द्रुत चित्त पूरा चित्त को ढक लेता है उसमें, उसके अलावा और किसी का चिंतन नहीं है, मतलब हाउसफुल, हमारा हृदय का हाउसफुल हो गया, हाउसफुल मतलब क्या, और किसी चीज के लिए जगह नहीं, द्रुत चित्त पूर्ण चित्त अभी हाउसफुल हो गया, कृष्णमय हो गया है, तो द्रुत चित्त उच्च ही जोर जोर से हंसती, जोर जोर से हंसता है, रोदिति जोर जोर से चिल्लाता है, रौती रोता है, गायती जोर जोर से गाता है, उन्मादवत पागल जैसा, लोक बाह्य लोग क्या कहेंगे, उसकी कोई चिंता ही नहीं है उसको, तो अति काम वासना में एक व्यक्ति कितना कितना रिस्क लेता है देखो, जब काम वासना तीव्र हो जाती है तो लोग क्या सोचेंगे उसकी विचार नहीं करता है आदमी, क्योंकि वही प्रेम विकृत प्रतिबिंब काम वासना में। तो काम जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है, निर्भय हो जाता है। उसी तरह से जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है भगवान के प्रति, वो भी निर्लज्ज हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहेंगे हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, तुम दुनिया को प्रसन्न नहीं कर सकते, दुनिया तुमको अच्छा लगा तो तुम भी आओ, नहीं तो हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, हम नाचेंगे हम गाएंगे क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं और निडर, हमें डर नहीं है, कुछ भी करने के लिए तैयार। अरे उसका परिणाम क्या होगा, तुम्हारा पैसा नहीं कमाओगे तो इतना ज्यादा भक्ति करोगे तो फिर घर का कौन संभालेगा, क्या होगा उसका, क्या होगा। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना लोग योग क्षेम महा, हमको विश्वास है ये हमारे प्रेमी है। श्रीवास ठाकुर ने ही बोला, महाप्रभु ने पूछा, अरे तू इतना बेजवाबदार हो गया, घर के पति सोचता ही नहीं, तू तीन ताली बजाता है बस। ऑफकोर्स हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते, फिर ताली बज जाएगी हमारी, अनुकरण नहीं कर सकते, अनुसरण करना है, उतना तो कम से कम विश्वास। श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के एक प्रसंग में जहां मृगारी को नारद मुनि बोलते हैं, तू पाप करना बंद कर, पाप करना यही तो मैं काम सीखा, मेरे पिताजी ने ही सिखाया मेरे को, आधा मार के बोले पूरा मार, बोले क्यों पूरा मारना है, तो उन्होंने बताया देख आधा मारेगा तो इतना क्या क्या परिस्थिति से तेरे को गुजरना पड़ेगा। एक उसको एक हॉरर चेंबर से ले गए उसको, ये होने वाला है, तुरंत शरण गया नारद मुनि की, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, क्या करना है बोलो, धनुष तोड़ दे। शरण लिया तो बहुत ज्यादा ही दे दिया आपने, थोड़ा थोड़ा ठीक है, पूरा मारना, आपने तो बोला धनुष ही तोड़ दो, बोले धनुष तोड़ दो, फिर मेरा चलेगा कैसा, जिंदगी कैसा चलेगा, मैं तुझे सप्लाई करूंगा, चिंता मत कर। और प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण लिखते हैं, द सोर्स ऑफ आवर इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ आवर मेंटेनेंस, द सोर्स ऑफ आवर इनकम इज नॉट द सोर्स ऑफ आवर मेंटेनेंस। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं कमाऊंगा तो ही मैं खाऊंगा, मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसा चलेगा दुनिया, परिवार कैसा चलेगा। इसका मतलब अहंकार विमूढ़ात्मा, करता हम मैं कर रहा हूं, अगर मैं नहीं होता तो परिवार का क्या होगा, जाके देखो बाहर परिवार चलता ही रहेगा, तुम नहीं चलाने वाले, चलाने वाले कृष्ण है, उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। मूर्खतावश हम समझ रहे हैं कि हम दुनिया चला रहे, मैं नहीं रहूंगा तो इस देश का क्या होगा, ओहो तुम्हारे आने से पहले देश नष्ट होके सड़ गया था और तुम्हारे आने के बाद भरा फूला लग रहा है, तुम्हारे जाने के बाद फिर से हो जाएगा ऐसा। अरे ऐसे कई महारथी अपने आप को समझने वाले लोग आए, झंडा गाड़ के गए भी, देश अभी भी चल रहा है, दुनिया अभी भी चल रही है, अहंकार में हम समझ रहे मैं चला रहा हूं। हां कर्तव्य के रूप में हमें, हम कर रहे हैं निभा रहे हैं, पर हमें विश्वास है कि मैं नहीं चला रहा हूं, ये एक्चुअली कृष्ण चला रहे हैं, मैं उनको सिर्फ सहयोग दूंगा, सही तरह से चलाने में सहयोग दूंगा, और ये मेरा मेरी मेरे शुद्धिकरण के लिए, बस मैं नहीं हूं तो भी दुनिया चलेगा। तो अनन्यास चिंतयन्तु माम, तो मृगारी को ये बताया इस तरीके से, कहां से इस तरफ आ गए हम लोग, नहीं वो हाँ रागानुग भक्ति में स्वाभाविक, जैसा नदी अपने आप बहती है समुद्र की ओर, ऐसा हमारा ये बहना चाहिए। तो इस तरह से और ये हाँ ये प्रफुल्लित चेतना, ये प्रफुल्लित चेतना है। और उस समय देखते हैं वो पीछे का जो हरा हरा वो झड़ी जाता है एक्चुअली। और जब वो मृत्यु होती है नारद मुनि के प्रसंग में हम देखते हैं प्रथम स्कंद में, हाँ सिर्फ समय काल का राह देख रहे थे, जिस समय वो टूटा वापस भगवत धाम और नित्य शाश्वत पार्षद बन गए नारद मुनि, वही शूद्रानी का पुत्र, क्योंकि भक्ति वेदांतों का सुनकर व्यवसाय आत्मिका बुद्धि बनकर अपनी चेतना को विकसित उसी पे ध्यान रखा हो, और इसीलिए भी अपने जीवन को सफल किया उसने। तो हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जैसे महाराज ययाति के कई पुत्र थे, महाराज ययाति को प्रेम हो गया उर्वशी से, उनकी काम वासना पूर्ण करना है। देखो आदमी काम वासना तृप्त करने कितना निर्लज हो जाता है। उर्वशी उससे पहले जब ये प्रसंग आता है देवयानी और शर्मिष्ठा का, हाँ तो शाप दे देते शुक्राचार्य, शाप दे देते तो बूढ़ा हो जा, तू बूढ़ा हो गया तो बच्ची रोती, अरे कंप्लेंट करने आया तो और ज्यादा कंप्लेंट, तो ऐसी परिस्थिति बना, मैंने कहा कि उसको सुधारो, सुधारने के बदले आपने उसको बूढ़ा बना दिया, अब मैं कैसे रहूंगी आपकी पुत्री। अरे 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 वो भी सही बात है, गुस्से में मैंने ऐसा कुछ कर दिया। तो बोले ठीक है, ययाति को बोले एक काम कर, तेरे पुत्र में से कोई भी अगर तेरा बुढ़ापा स्वीकार करने के लिए तैयार है तो उसे तू दे सकता, बदल एक्सचेंज म्यूचुअल एक्सचेंज। तो ये अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए ययाति अपने बच्चों से अपने बोल रहे, तू मेरा बुढ़ापा लेगा और मेरे को जवानी देगा। आदमी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कितना स्वार्थी हो जाता है, बच्चों से मांग रहा है अपना नवयुवक, मैं नवयुवक तेरा नौजवान, मेरे को नवयुवक क्या बोलते नवयौवन मुझे दे दे और तू मेरा बुढ़ापा ले ले। कुछ बच्चों ने कहा क्यों वाह माला पण पाहिजे, आता तुम्हाला वय झाला आम्ही करायचा आहे, आता मौज आनंद मस्ती। तो कुछ लोगों ने, उनका भी स्वार्थ, तेरा स्वार्थ मेरा भी वैसा भी स्वार्थ है, मैं क्यों दू किसी और से ले लो, तो उन्होंने नकारा। फिर यदु के पास गए, यदु ने भी नकारा, यदु ने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं ये शरीर मिला है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आत्म साक्षात्कार के लिए, और मैं आत्म साक्षात्कार के लिए मैं इसको उपयोग करूंगा, और अभी मैं बुढ़ापा ले लिया तो मैं अच्छी तरह से भक्ति नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए माफी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। पर क्योंकि यदु ने नकारा अपने पिता का आज्ञा को, बड़े बच्चों ने भी नकारा, यदु ने भी नकारा, पर यदु का गुणगान होता है यदोश्च धर्मशीलश्च। सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में शुरुआत करते हैं यदोश्च धर्मशीलश्च, उस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए क्योंकि उसका उद्देश्य सही था। और इस तरह से यदु ने शुद्ध भक्त बनकर उसके कुल के सब लोगों का उद्धार भी किया, उनके पिता का भी उद्धार किया, ऑटोमेटिकली पिता का नहीं उस सारे वंश का उद्धार किया यदुवंश। आज भी यदुवंश की गुणगुना होती, हालांकि उन्होंने नकारा अपने पिता की आज्ञा को, पर उद्देश्य क्या था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उस वंश में आए और अपने आप को कहते हैं यदुवंश यदुकुल वीर यदुकुल तिलक। तो हम क्या करते हैं महत्व नहीं है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। और ये उद्देश्य एक्चुअली एक व्यक्ति की एक व्यक्ति का परीक्षा कि मैं प्रगति किया हूं कि आध्यात्मिक जीवन में मैं प्रगति कर रहा हूं कि नहीं, या कोई भी व्यक्ति, लाखों लोग हैं इस दुनिया में, कौन प्रगति किया हुआ व्यक्ति है और कौन प्रगति किया नहीं है, इसका परीक्षा क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है देखिए, तब समझ जाएगा उसकी चेतना कितनी आच्छादित है और कितनी विकसित है। सिर्फ आप पूछिए आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, सिर्फ ठंडे दिमाग से और प्रामाणिकता से बोलो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कम से कम 1 करोड़ कमाने का, और कोल्हापुर के सबसे अच्छे एरिया में ऐसा एक घर बनाने का, कम से कम 4 गाड़ी और एक अच्छी पत्नी, मिस कोल्हापुर पास काय पाहिजे हो, संतुष्ट हे माझा जीवनाचा लक्ष्य। वाह, पुनरपि जननम पुनरपि मरण, और ये करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। क्या रिस्क? करोड़ों योनि में फिर से भ्रमण करने के लिए तैयार। क्या रिस्क? वाह, 2 क्षण के लाभ के लिए ये 100 साल ऐसे देखते देखते चला जाता है, इसके लाभ के लिए करोड़ों जन्म को मैं रिस्क में डाल रहा हूं, 84 लाख में भ्रमण करने के लिए तैयार। तो ये एक प्रकार की कि क्या बोलते हैं चेतना, इससे समझ में आता है उसका स्तर क्या है। और ऐसे लोगों को समाज में गुणगान होता है, और उस गुणगान पाने के लिए लोग मेरा पूजा करें, लोग मुझे, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है व्यक्ति। तो ये हो गया एक स्तर, और उसका स्तर समझ में आता है। एक पशु है, पशु भी वही कर रहा है, पशु मैं जंगल का राजा हूं, मैं भोंकता हूं तो सब भाग जाते इधर से, ये पशु चेतना है। फिर दूसरे से पूछो, तुम क्या? अच्छी तरह से मैं धर्म कर रहा हूं, सोमवार को इधर, मंगलवार को इधर, बुधवार को इधर, हर रोज मैं जाता ही हूं, किस लिए? स्वर्ग लोग जाना है मुझे, निश्चित रूप से स्वर्ग में जाओगे, पर छीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, धर्म का पालन कर रहे हैं पर स्वर्ग लोक हमारा लक्ष्य है। फिर कुछ लोग ये सबको त्याग देते हैं ना, स्वर्ग स्वर्ग सुख मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? सिद्धि चाहिए, उच्च लोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, और अंत में पूरी सृष्टि का मैं निर्माण करना, ब्रह्मलोक में जाकर मैं भी ब्रह्मा जी को मदद करूंगा, और ब्रह्मा जी जाने के बाद मैं लूंगा ना, मैं पूरा संभाल लूंगा पूरी सृष्टि को भगवान की सेवा में। पर एक भक्त का एक ही होता है बस, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम, मुझे इस संसार में रहना नहीं है, रहना है तो भगवान की सेवा में, मुझे जाना है भगवत धाम, भगवान की सेवा 24 आवर्स, चाहे वो स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, चाहे नरक में डालो चलेगा, मेरे को स्वर्ग में डालो चलेगा, मेरे कहीं भी, मेरे को भगवत धाम की चेतना चाहिए, मुझे कृष्ण भावना भावना, और उस भावना कृष्ण भक्ति रस भाविता मदी मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लौल्यम एकलम मूल्यम जन्म कोटि सुकृति भी न लभ्यते। तो व्यक्ति देखने में गरीब लगता हो, फटे कपड़े क्यों न पहना हो, भीख मांगता क्यों ना हो, कोलवेच श्रीधर जैसे महाप्रभु ने बोला तू सबसे धनी आदमी है, एक दिन मैं पूरे दुनिया को दिखाऊंगा तेरे जैसा धनी यहां कोई नहीं है। गुणवत्ता, हमारे जीवन का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, ये डिसाइड करता है कितना प्रगतिशील व्यक्ति है, एडवांस्ड, उसकी चेतना कितना विकसित हुई है, और हमको वो ध्यान में रखना चाहिए बस, और सब चीज आएगा जाएगा, जो हमारे भाग्य में लिखा है वो मिलेगा ही, ना चाहते हुए भी ठूस ठूस के खाना मिलेगा, और नहीं लिखा है तो करोड़पति बनने के बाद भी डायबिटीज हो गया चक्कर नहीं, हाइपरटेंशन हो गया नमक नहीं, ये कहा नहीं वो नहीं, तो है क्या? 4 बिस्कुट सुबह, रात को सोने से पहले दो अंगूर, भूखा भूखा सब कुछ फ्रिज में रखा हुआ है, खोल के अच्छा तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है तो नहीं लिखा, नहीं मिलने वाला। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति, प्रहलाद महाराज कहते बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, उस चीज के लिए प्रयास करो। न लभ्यताम यद भ्रमताम उपर यद तल लभ्यते दुख वद अन्य, उसका शुरुआत क्या है श्लोक का, तस्यैव हेतो प्रयते तको विदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर यद। केवल उसके लिए लाभ प्रयास करना चाहिए। जीवन की जो शक्ति है, जीवन मतलब क्या, थोड़ी शक्ति थोड़ी बुद्धि थोड़ा समय, कुछ थोड़ा बहुत धन मिला है, थोड़ा बहुत शरीर मिला है, थोड़े समय के लिए स्वास्थ्य मिला है, और थोड़ा समय है हमारे पास और वो चले जा रहा है। अत्याहार ये आहार अति प्रयास, अत्याहार प्रयास, ऐसी चीज की क्यों प्रयास कर रहे हो जो वैसे भी तुमसे छीन लिया जाने वाला है, और जो तुम्हारे भाग्य में लिखा वो मिलेगा ही। तो जितना जरूरी है उतना काम करो, पर अपनी सारी शक्ति उधर डालो। तस्यैव हेतो प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर यद। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल में जहां नहीं मिलता उसके लिए प्रयास करो। क्या है वो, शुद्ध भक्ति। ब्रह्मा जी भी उसके लिए लालायित हैं। 14 लोकों में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं केवल यही चाहते हैं। तो किस लिए कर रहे हैं इससे पता लगता है कि उसकी चेतना कितनी विकसित हुई है। पर दुर्भाग्यवश हम ये सब जानते हुए भी हमारा प्रयास कितने दूसरी चीजों में चला जाता है, कितना समय कितनी शक्ति कितना धन छोटी मोटी चीजों के लिए चला जाता है, और जिसके लिए लगाना चाहिए, जो सौभाग्यवश मिल गया है, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जी, और उसमें हम लोग आलस्य कर देते हैं, इधर उधर भटक जाते, हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। 2 साल ये करूंगा उसके बाद तो भक्ति करना ही है ना महाराज। अरे 2 साल जीव क्या गारंटी है, हर रोज सुबह उठा शरीर मिला ना, हरे कृष्णा सब ठीक है, हाथ काम कर रहा है, पैर हिल रहा है, चलो कुछ तो करो, थोड़ा तो भक्ति करो। पता नहीं कल सुबह उठेंगे कि नहीं, उठने के बाद हाथ पैर हिलेगा कि नहीं। पदम पदम यत विपदम, ऐसे मनुष्य जीवन ऐसा है। तो वेदों का निर्माण देखिए भगवान ने इतनी सुंदरता से की है, धीरे 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 उठाते हैं। कल एक माता जी ने अच्छा प्रश्न पूछा, बोले हमारे बच्चे सुनते ही नहीं पढ़ते ही नहीं और बोलने बोलने देखेंगे कैसे सुधरना है इनको। मैं उन्हीं मन सोच रहा था, हम सब ऐसे बच्चे, हमारे माँ बाप दोनों खड़े, सुधर जा बेटा, सुबह उठ के आना इधर, बेटा 16 माला किया, होमवर्क किया क्या तेरा, 16 माला किया कि नहीं कल का होमवर्क, अंतर कर दे, संडे को बैठ के करूंगा ना एक साथ पूरा, बेटा दर्शन किया क्या, टीवी का दर्शन हो रहा है। हम भी बच्चे ही हैं, बिगड़े बच्चे। तो शास्त्र दिया गया, शास्त्र क्या बताता है, क्या चीज हमें करना है, किस तरीके से करना है। तो भगवान बड़े निपुण है, एकदम जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं उनको बोलेंगे देख बेटा अभी तो अच्छा पढ़ाई करेगा, बाद में चलकर बड़ा आदमी बनेगा, करोड़ों कमाए, हाँ वो छोड़ा मेरे को अभी लॉलीपॉप चाहिए बस। उसकी बुद्धि इतनी है, उसको तुम बोलोगे तो बड़ा होके तेरे को 15 साल अच्छा से पढ़ेगा और कॉमर्स हो जाएगा, उसके बाद MBA हो जाएगा, उसके बाद CA हो जाएगा, बोले ABCD A-Z कुछ नहीं समझता, अभी मेरे को कुछ खाने को दो बस। तो ये सब नहीं समझता, उसको सिर्फ एक ही चीज समझता है, एक थप्पड़ दूंगी, समझा, चुपचाप पढ़, ठीक है। थप्पड़ मारना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए, तो सबसे पहले किसी को कार्यरत करने में डर दिखाना पड़ता है, जो एकदम तमोगुणी है ना, जिसकी चेतना पूरा संकुचित है, उसको डर दिखाए बिना काम नहीं करता कोई। तो डर दिखाना, किस चीज का डर? नरक में जाएगा तू, अधोगति हो जाएगी, तार योनि अधपथ हो जाए, अज्ञश्च अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। 84 लाख योनियों में भटकेगा मूर्ख, ले ले हरिनाम, ले ले थोड़ा, नरक में जाएगा तू, पता नहीं कौन योनि में जाएगा, भिखारी योनि में जाएगा तो, कीड़े कीटाणु की योनि में जाएगा तो मृत्यु का भय, गरीबी का भय, नरक योनि में जाने का भय, संसार में तड़पने का भय, तो भय दिखा के ही काम करता है। हम सबकी परिस्थिति, मैं कभी कभी देखता हूं गाड़ी चला रहा है, पुलिस वाले को देखा तो बेल्ट लगाओ, पुलिस है इसीलिए बेल्ट लगा रहे, बस पुलिस नहीं होता तो बेल्ट नहीं लगाता। बेल्ट लगाने का उद्देश्य शायद एक्सीडेंट होने में कुछ धक्का वक्का ना लगे। एक माता जी हमारी पहचान की, जा रहे थे, सो रहे थे आराम से पीछे, इसमें पर किसी और से ब्रेक लगा एकदम फुल स्पीड 120 में जा रहे थे, और जाके फाड़ लगा पूरा सामने का सीट का लग गया, पूरा दांत वांत निकल गया, उसके बाद सर्जरी करना पड़ा, बहुत सारा ऑर्थो डॉन्टिस्ट सबके पास जाना। तो डर के मारे, ये नहीं कि किस लिए बना है, उसको उद्देश्य कुछ और है। तो एक चीज है डर दिखाना, अरे नहीं तो फाइन लगेगा तेरे को, 100 रुपया फाइन इसीलिए लगाना, 500 रुपया फाइन इसीलिए हमको सुधरो। तो पहले डर, और शास्त्र हमें डर दिखाता है। यम शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि मा वाप्नोति न सुखम न पराम गति। तेरे कुछ नहीं मिलेगा तेरे को। अच्छा ठीक है, क्या करना है बोल, कितना वाला करना है बोल। तो डर पहला, पर जो रजोगुण में है उसको गाजर दिखाना पड़ता है। तू अच्छा करेगा तो तेरे को 5 स्टार मिलेगा, तो अगर अच्छा व्यवहार करेगा तो तेरे को 1st क्लास देंगे, तेरे को एक जो चाहिए वो बिला ला के दूंगी। तो अगर अच्छा करेगा तो देखो क्लास में तेरे को ये मिलेगा, बाद में प्रमोशन मिलेगा, ये करो वो करो, तो गाजर लटका। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्राम, ये करोगे तो ये मिलेगा तुमको। जो भी भिखारियों को कपड़ा देता है वो अगले जन्म में कभी नंगा नहीं रहेगा। स्वेच्छा से होना दूसरी बात। जो कभी भी किसी को अच्छे तरह से खिलाता है, दान देता है, उसको कभी भूखा नहीं रहेगा। जो पानी पिलाता है, नहीं पानी पिलाएगा तो छिपकली बनेगा तू, और दरवाजा में तेरा पूंछ अटक के कट जाएगा। एटलीस्ट मेरी माँ मेरे को बोलती थी, इसीलिए डर के मारे सबको मैं पानी पिलाता था। कोई भी घर में आए, क्या नाम है? नाम छोड़ो, पानी पिया है क्या आपने? बैठो अभी, पानी लो। बोला नहीं मेरे को पानी, नहीं पानी पीना ही पड़ेगा तुम्हें, छिपकली बनूंगा ना मैं। तो डर के मारे काम कराना, पर उससे थोड़ा ऊंचा है, ये करेगा तो ये बनेगा, अगले जन्म में कभी तू प्यासा नहीं रहेगा। प्याऊ खोलते ना, ये जेन वाले लोग बहुत प्याऊ खोलते हैं। हाँ क्यों? क्योंकि ये सत्य है, आप जितना दोगे उसका 100 गुना मिलेगा, ब्राह्मणों को दिया तो 1000 गुना मिलेगा आपको, कभी कभी नहीं होगा, इट्स ए फैक्ट। जितना दान दोगे उसका 50 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। योग्य व्यक्ति को दिया, जितना योग्य व्यक्ति को दिया उतना ज्यादा वापस मिलेगा, ये सत्य है। पर इसके लिए हम दान नहीं देना चाहिए, पर उनके लिए वही प्रेरणा है जो रजोगुण में है। और जो सत्गुण में आ गया, अभी बड़ा बच्चा हो गया, उसको लॉलीपॉप दिखाने बोलेगा नहीं चाहिए, तू ही लॉलीपॉप खा। अभी बड़ा बच्चा हो गया, उसको डरा भी नहीं सकते, भूत आ जाए, भूत मेरे को मालूम है, कुछ नहीं, उसको लॉलीपॉप नहीं दे सकते। उस समय कर्तव्य। बेटा कोई समझाता है बच्चों, मां बाप ने इतना किया है तो उनके लिए इतना नहीं कर सकता, तो इतना तो कर, सरकार ने इतना सब इंतजाम किया, इसका सदुपयोग कर, दुरुपयोग मत कर, सब ठीक से उपयोग करना है। इतना इतने तुरे मां बाप ने तेरे को बना के दिया है, इसको अच्छी तरह से बना के रख, बढ़ा रहा है नहीं तो कम से कम बना के तो रख इसको, तो तेरा कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब क्या, चाहे आदान प्रदान हो या ना हो, उस तरह से जैसे मां बाप बच्चों का देखभाल करते हैं, कर्तव्य के रूप में करते हैं। कभी कभी बेटे नालायक निकले, भाग गया किसी लड़की के साथ, भाग गया और लड़की ने बोला आए तेरे मां बाप के साथ मैं नहीं रहूंगा, ठीक है चल, मां बाप को त्याग दिया, चलेगा? वो भी त्यागते हैं अपने मां बाप को, और ब्रह्मचारी भी त्यागते हैं वो जवाबदारी को। अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, किस लिए कर रहे हैं, और उससे भी ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है, प्रेम से प्रेरित होकर, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लव, प्रेम से। और किसका प्रेम, कृष्ण चाहते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं ये सारे कार्य करूंगा, दुनिया कुछ भी कहे मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण मत प्राणनाथ अस्तु स एव ना पर, हे प्रभु आप ही मेरे प्राणनाथ हो, और आपको अगर ये प्रसन्न करता है तो सब मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मन कहे या ना कहे, लोग कुछ कहे या ना कहे, मैं करूंगा क्योंकि आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। और आपको जो अच्छा नहीं लगता, कितना भी मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता हो, मुझे नहीं चाहिए वो, अगर वो आपको अप्रसन्न करता है, और ये संबंध जब हम सदगुरु के साथ होता है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य अप्रसादात, यही हमारी एक चिंता, क्योंकि हमें नहीं मालूम भगवान कौन है, पर हमें वो उनके प्रतिनिधि देख रहे हैं, उनको प्रसन्न करना हमारा जीवन, उनको अप्रसन्न करना हमारे नरक से भी दुखमय है। जब वो प्रेम जागृत हो जाता है तब हम सुरक्षित अवस्था में, पर जब तक प्रेम नहीं है, कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, कम से कम कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। तो यहां हम देखते हैं, जैसे महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या अपनी माता को प्रेम नहीं करते थे वो? क्या अपनी पत्नी जो इतनी पतिव्रता थी उनसे क्या प्रेम नहीं करते थे वो? श्रीवास ठाकुर जैसे एक एक क्षण में प्राण देने के लिए तैयार, महाप्रभु की प्रसन्नता श्रीवास ठाकुर की प्रसन्नता थी, बस अपना पुत्र गुजर गया फिर भी बोले रो मत, महाप्रभु की प्रसन्नता में थोड़ा भी बाधा नहीं आनी चाहिए। सचमुच में सबसे श्रेष्ठ वैराग्य महाप्रभु ने दिखाया, ऐसी माता जगन माता जिसका एकमात्र उद्देश्य था महाप्रभु खुश रहे, मेरा निमाय खुश रहे, बस विष्णुप्रिया एकमात्र उसका उद्देश्य, मेरे पति निमाय उनकी सेवा, और सारे भक्तगण उनका एकमात्र इच्छा महा, ऐसे लोगों को त्यागना, महाप्रभु ने त्याग दिया उन लोगों को भी। क्यों? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरणीयम्। क्यों? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, जिसको त्यागना बहुत मुश्किल है संसार में, सुरेप्सित देवतागण भी ऐसी चीजों की जो याचना करते हैं, ऐसे ऐसे सुंदर संबंध थे महाप्रभु के, यश था, सुंदर संबंध था, प्रेममय संबंध, लोग प्राण देने के, आपके जीवन में अगर एक भी व्यक्ति हो ऐसे जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आप सब, वो बड़ा ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। कभी कभी करोड़ रुपया कमाते हैं पर सब जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं राइट, सब लोग आसपास में खड़े हुए लोग, कब जल्दी मरेगा ताकि सब मेरे को आ जाएगा या किसी न किसी तरह से इसका पैसा मुझे मिल जाए। पर अगर कोई व्यक्ति है बोले तुम जो भी स्थिति में हो मैं तेरे साथ हूं चिंता नहीं, ऐसा व्यक्ति अगर एक भी व्यक्ति है हमारे जीवन में तो हमको समझना चाहिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत ऐश्वर्यशाली हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में हम देखते हैं सब कुछ है लोगों के पास पर ऐसा संबंध ही नहीं है, ऐसा संबंध व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं है उनके, सूना सूना लगता है, दुखी है। तो ऐसा संबंध भी महाप्रभु त्यागने के लिए तैयार थे। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, ऐसा धन, ऐसा यश, ऐसी सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, सब कुछ। माया मृगम दयितया ईप्सित मन्वधावत, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अपना सुंदर परिस्थिति को त्याग कर वो, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का सन्यास जो है पूरे ब्रह्मांड में सर्वोच्च वैराग्य का सूचक है वो। इसीलिए वो नाई भी रो रहा था जो महाप्रभु का बाल काटने आया, पूरी कटवा रो रही थी, ऐसे सुंदर बाल। हम भी बाल काटते हैं, कौन पूछता है? नहीं काटते तो पूछता है क्यों नहीं काटा, नहीं हिप्पी जैसा लग रहा, काट जल्दी। पर महाप्रभु के बाल जैसे जैसे एक गुच्छा बाल नीचे गिरते थे लोग बेहोश होकर गिर रहे थे, ऐसा ऐसी शारीरिक सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता थी ऑब्वियसली। महाप्रभु खुद दिखा रहे। तो इस तरह से इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान गीता में सब बोले जाति धर्म गुण धर्म सब धर्म बताया, लास्ट में क्या बोले सर्वधर्मान परित्यज, तो फिर बताया क्यों इतना सब? अगर माम एकम शरणम पहले ही बोलना था ना तो ये गीता का पहला श्लोक में 18 अध्याय के 66वें श्लोक क्यों डाला? क्योंकि सब हम उस स्तर पर नहीं है सर्वधर्मान परित्यज। धीरे 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 शास्त्र हमको उठाता है, पहले डर से, बाद में कुछ भोग दिखा, कुछ भौतिक लोभ लोभ प्रलोभन प्रलोभन दिखाकर हमें दिखा रहे ये करोगे तो ये मिलेगा, बाद में कर्तव्य के रूप में कहा जाता है, अरे गुरु ने तेरे इतना किया है कम से कम उनको पाप में फिर से पाप में मत चढ़ा, तेरा नहीं करने से गुरु को क्या होता है, इतना तो तेरे लिए इतना रिस्क लिया तू तो सुधर जा भी ठीक से कर्तव्य के रूप में। और फिर प्रेम, और प्रेम मतलब क्या? आश्लीष सेवा पादरतम पिनष्टुमाम अदर्शनाम। कर्तव्य मतलब क्या? तुम करो या नहीं करो मैं करता रहूंगा। पर यहां प्रेम मतलब क्या? आदान प्रदान की तो दूर की बात, ये सब करने के बाद डांट खाना, ये सब मानने के बाद तकलीफ उठाना, आश्लिष्य वा पादरताम पिनिष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनावर। ये बहुत ऊंची बात है ये, पर महाप्रभु की कृपा से मिल सकता है। प्रेमा अपमार्थो महान, यही देने के लिए आए महाप्रभु बिना योग्यता के, जो करोड़ों जन्मों के बाद योगियों को नहीं मिलता था, मुक्तानाम सिद्धानाम नारायण परा सुदुर्लभ, मुक्तानाम सिद्धानाम ऐसे लोगों के लिए भी सुदुर्लभ, ऐसे चीज भगवान ऐसे बुफ्त में दे रहे हैं हमें। पात्र अपात्र ना देखे स्थान स्थान, जी जहां पाए तहां करे प्रेम दान, वही प्रेम। ये प्रेरणा तो भले अभी हमारे जीवन में वो प्रेम नहीं हो, अभी हमारे लिए गाजर वही है, प्रेम मिलेगा चलेगा, ये गाजर अच्छा गाजर है, यह प्रलोभन अच्छा प्रलोभन है। वो प्रेम के लिए ब्रह्मा और शिव जी भी लालायित है, तो वो प्रेम है, वही हमारा एकमात्र। तोई में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिम उद्वहता मद्धा गंगई व उद्गम उदनमती। कुंती महारानी यही चाहती है, बस यही चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। महाप्रभु कहते हैं इसी श्लोक के अंत में चैतन्य चरितामृत में, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, जिसके जीवन में जीवन के अंत में प्रेम नहीं मिला उसको, धर्म स्वनुष्ठित पुमसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम। वो कृष्ण प्रेम नहीं मिला, प्रेम धन बिना व्यर्थ श्रमये वही केवल, और दरिद्र जीवन भिखारी जैसा मर गया, तो कुत्ते बिल्ली जैसा मर गया, मनुष्य होनी प्राप्त करके, गुरु का कृपा प्राप्त करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके, सुंदर मौका करने के बाद अगर कुत्ते बिल्ली जैसे मर गए, दरिद्र जीवन, अरे कैसा दरिद्र जीवन है। तो प्रार्थना क्या है, दास करी, प्रभु मैं आपका दास है, मेरे को वेतन चाहिए, मैं फ्री में नहीं आया, वेतन मांगो। दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, मैं वेतन मांगता हूं, मेरे को एक ही वेतन मांगता हूं, और कुछ नहीं, और वो क्या, प्रेम। प्रेम मतलब प्रेममय सेवा। इसलिए हम देखते हैं सारे भक्त पूछते हैं आपको क्या चाहिए, मुझे और सेवा चाहिए। नहीं, वो तो सेवा तो कर रहा है, और क्या चाहिए, नहीं वो ही तो चाहिए बस, आपका स्मरण रहे और आपकी सेवा में हमेशा लगे रहूं। बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही मोराश। तो इस तरह से हम देखते हैं ये महाप्रभु देने आए। तो अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है, नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा, उसके बीच में है हम लोग। ये समय ना सबसे महत्वपूर्ण, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं दो तिथि सबसे श्रेष्ठ है, नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा, और उसके दोनों के बीच में दो बड़े बड़े सागर सिंधु, दोनों प्रेम के सिंधु, और उसके बीच में हम खड़े हैं। पर ढूंढ क्या रहे हैं, विषय भोग का बिंदु। अरे दोनों साइड सिंधु है, उसमें डुबकी लगाओ। तो ये महाप्रभु का देन है, यही प्रभुपाद ने बड़े कृपापूर्वक दिया है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हम किसी चीजों को नकारते हैं, अनुकूल्य से संकल्पो प्रतिकूल्य से वर्जनम, तो चलेगा, अगर नहीं तो फिर बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, गलती हो जाएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, श्री श्रीनिथाय गौरचंद्र की, गौर प्रेमानंद।